अन्वय शॉवर लेकर बाहर आया और तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए आन्या के पास आकर बैठ गया। आन्या ने उसे बताया था कि यहाँ उसे अधिक सुरक्षित महसूस होगा, और अब अन्वय को एहसास हो रहा था कि उसने सही कहा था। उसके चेहरे पर इतना सुकून था, जबकि अन्वय वहाँ मौजूद भी नहीं था। आन्या उसे देखने का मौका ढूंढती रहती थी, पर अन्वय कुछ सेकंड के लिए ही अपनी निगाहें उसके चेहरे पर टिका पाता था। जब आन्या सोती थी, तभी वो उसके चेहरे को जी भर कर देख पाता था, और पिछले 4-5 दिनों से उसे वो मौका भी नहीं मिल पाया था, इसलिए अब वो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा था। लगभग 1 घंटा बीत गया, डिनर का समय हो गया था, तो अन्वय ने आन्या को जगाया। आन्या ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और सामने अन्वय को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम कब आए? जब तुम किताब पढ़ते पढ़ते उसी कुर्सी पर सो रही थीं। चलो अब उठकर मुंह धो लो, तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूँ, डिनर वहीं आएगा तुम्हारा, अन्वय वहां से उठते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आन्या झट से उठकर बैठते हुए बोली, नहीं, मैं भी तुम्हारे और माँ के साथ डिनर करूंगी। उसकी बात सुनकर अन्वय उसकी ओर घूम गया और गंभीरता से बोला, तुम वहां नहीं जाओगी, मुझे खुद को बदलना होगा और मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे हिसाब से खुद को ढाल दूंगी। अगर तुम्हें किसी के प्यार को पाने के लिए खुद को बदलना पड़े, तो वो प्यार नहीं, सौदा होगा। अगर मुझे तुमसे प्यार होना होगा, तो तुम जैसी हो वैसी ही रहते हुए होगा, और अगर नहीं होना होगा, तो तुम खुद को पूरी तरह बदल लो, तब भी नहीं होगा। और अगर खुद को बदलने के बाद तुम्हें मेरा प्यार मिल भी गया, तब भी क्या होगा? तुम वो आन्या रहोगी ही नहीं जो तुम आज हो। तुम मुझे पा भी लो तो क्या फ़ायदा, जब तुम खुद को खो चुकी होगी। इसलिए खुद को बदलने की कोशिश करना बंद करो। तुम जो हो, जैसे हो, अच्छी हो, सबसे अलग हो, और वही तुम्हारी खूबसूरती है। तुम्हें मेरे लिए या किसी के लिए भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्वय ने इतनी संजीदगी से अपनी बात कही कि आन्या उसे देखती ही रह गई। अन्वय खामोश हुआ, फिर कुछ देर बाद आगे बोला, आई होप अब तुम खुद को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करोगी। तुम्हें मैं पसंद हूँ? आन्या ने अचानक सवाल किया, जिससे अन्वय कुछ देर खामोश रहा, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, तुम इतनी प्यारी हो कि किसी के लिए भी तुम्हें नापसंद करना नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर आन्या का चेहरा खिल उठा। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? ये क्या कर रही हो तुम? अन्वय उसके चिल्लाने से चौंकते हुए बोला, पर जैसे ही बोलते हुए आन्या की ओर घूमा, आन्या उछलकर उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेटते हुए उस पर लटक गई और उसके कंधे पर अपना चेहरा छिपा लिया। अन्वय एकदम से जम गया, उसके हाथ हवा में रह गए। आन्या की गर्म सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं, जिससे अन्वय के शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसकी धड़कनें एकाएक बढ़ गईं और आंखें हैरानी से फैल गईं। आन्या की निकटता उसे बहकाने लगी, तो उसने झट से उसे खुद से अलग करते हुए कहा, इतनी फ्री मत रहा करो मेरे साथ, भूलो मत तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, मुझे पता है, आन्या ने उसकी बात काटते हुए कहा और मुस्कुराकर आगे बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं तुम्हारे साथ एकदम फ्री रहती हूँ, किसी बात की टेंशन नहीं रहती, बस जो दिल में आता है कर देती हूँ, तुम माइंड मत किया करो यार, वैसे भी गले लगना तो नॉर्मल है, और मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कौन सा मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चूम लिया है जो तुम इतना भड़क रहे हो। उसकी बात एक बार फिर अन्वय को स्तब्ध कर गई। ये लड़की हर बार अपने पागलपन की एक नई हद पार कर जाती थी और अन्वय कुछ नहीं कर पाता था। इस बार भी उसने खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी और मुड़कर गेट की ओर बढ़ गया, तो आन्या भी मुस्कुराकर उसके पीछे पीछे चल दी। उसने आन्या को उसके कमरे में छोड़ा। आन्या ने जूली के साथ डिनर किया, फिर उसे भेज दिया और खुद बाहर बादलों को देखने लगी। आज दोपहर से शाम तक सोई थी, तो उसे अब नींद नहीं आ रही थी। बैठे बैठे बोर हो गई, तो खुद ही अन्वय के कमरे की ओर बढ़ गई। रास्ता उसे याद था, तो वो खुशी खुशी उसके कमरे की ओर बढ़ गई। अन्वय ने नीचे जाकर डिनर किया, फिर वापस आकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठा, तो आन्या के वहाँ बैठने की खुशबू उसके लबों पर मुस्कान ले आई। उसके होने का एहसास अब भी वहाँ था। उसने टेबल पर रखी किताब उठाई जो आन्या पढ़ रही थी और उसे पढ़ने लगा। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसके कानों में आन्या की आवाज़ पड़ी, ओए, वो मेरी किताब है, मैं पढ़ रही थी उसे, तुमने मेरी किताब क्यों ले ली? आवाज़ सुनकर अन्वय ने निगाहें उठाकर सामने देखा, तो आन्या उसके ठीक सामने खड़ी थी और कमर पर हाथ रखे उसे गुस्से से घूर रही थी। अन्वय ने उसे वहां देखा तो भौहें चढ़ाकर बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्यों कर रही हो? मेरी किताबें यहाँ रह गईं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा किताबें ही पढ़ लूँ, तो वही लेने आई थी, पर तुम मेरी किताब क्यों पढ़ रहे हो? अब आन्या ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा, पर अन्वय अब भी उसे घूरते हुए बोला, इतनी रात को अकेली यहाँ आई हो तुम? हाँ, मैंने जूली को आराम करने के लिए भेज दिया था, तुम्हारे कमरे का रास्ता मुझे याद था तो मैं खुद ही आ गई, आन्या ने सहजता से जवाब दिया। पर उसकी बात सुनकर अन्वय की भौहें तन गईं। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? जरा भी डर नहीं लगता तुम्हें? इसमें डरने वाली क्या बात है? कोई भी नहीं था बाहर, बस मैं थी और तुम्हारे पास ही तो आ रही थी मैं, फिर डर कैसा?
आन्या को उसके गुस्से की वजह समझ नहीं आई और एक बार फिर अन्वय को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सका। आन्या ने आगे आकर किताब ले ली, फिर उसे देखकर बोली, मैं यहीं रुक जाऊं? अपने कमरे में मुझे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है जिसकी निगाहें हर वक्त मुझ पर टिकी हैं। मैं सहज नहीं रह पाती। उसकी बात सुनकर अन्वय के भाव कुछ बदले, पर उसने जाहिर नहीं किया और हामी भर दी। तो आन्या जाकर अन्वय की आराम कुर्सी पर बैठ गई और किताब पढ़ने लगी। अन्वय खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बेड पर एक तरफ बैठकर उपन्यास पढ़ने लगा। आन्या पूरी तरह से पढ़ने में मग्न हो गई थी और अन्वय बार बार उसे देख रहा था। रात की 2 बज गए। अब आन्या को नींद आने लगी तो उसने किताब अपने सीने पर रखी और टांगे ऊपर करके सिकुड़कर कुर्सी पर ही सो गई। अन्वय कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास जाकर किताब साइड रखी और उसे बेड पर लिटा दिया। खुद दूसरी तरफ लेट गया और लाइट्स ऑफ कर दी। आज फिर दोनों एक कमरे में एक ही बेड पर साथ में सो रहे थे। अगले दिन आन्या की नींद सुबह 4 बजे ही खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठी और नजरें घुमाई तो अन्वय का कमरा देखकर पहले वो हैरान हुई, पर जल्द ही उसे याद आया कि कल वो अन्वय के कमरे में किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। अन्वय ने उसे उठाकर बेड पर सुलाया, ये सोचकर उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। फिर उसके मन में अन्वय का ख्याल आया तो उसने झट से अपनी नजरें घुमाई और दूसरी तरफ सो रहे अन्वय पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। सोते हुए कितना प्यारा लग रहा था वो। आन्या अपने गाल पर अपनी हथेली रखे बड़े प्यार से उसे देखने लगी। लगभग 1 घंटे बाद अन्वय की पलकें हिलने लगी। आन्या तुरंत वापस लेट गई। अन्वय कुछ पल बाद उठकर बैठ गया। उसने अपने बगल में सो रही आन्या को देखा, फिर बेड से उतरते हुए बोला, जानता हूँ सोने का नाटक कर रही है, तो अब अपनी नौटंकी बंद करो और अपने कमरे में चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे से निकलते देखे या किसी को ये पता चले कि हम रात को साथ सोए थे।
पर क्यों, हम तो वहाँ भी साथ ही रहते थे, साथ ही सोते थे। आन्या ने तुरंत ही आंखें खोलकर उसे देखते हुए सवाल किया और उठकर बैठ गई। अन्वय ने उसका सवाल सुना तो पलटकर उसे देखते हुए बोला, वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है, उठो चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाऊं। आन्या ने अब कुछ नहीं कहा और उठकर खड़ी हो गई। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मोहिनी की नज़र उस पर पड़ी जो अन्वय के कमरे की ओर ही बढ़ रही थी। आन्या को इतनी सुबह अन्वय के कमरे से निकलते देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगले ही पल वो वैम्पायर में तब्दील हो गई और जैसे ही आन्या की ओर बढ़ने को हुई, अन्वय भी कमरे से बाहर निकला। अन्वय को देखते ही उसके कदम ठहर गए। आंखों में नफ़रत की ज्वाला धधक उठी। अगर इस वक्त अन्वय उसके साथ नहीं होता तो वो आन्या को अभी ही मार देती, पर अन्वय को देखकर उसने अपने गुस्से को किसी तरह काबू किया, फिर छुपते हुए उन दोनों के पीछे जाने लगी। उसे देखना था कि दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। अन्वय आन्या के साथ उसके कमरे के बाहर पहुंचा और अपने हाथ में पकड़ी किताब उसे पकड़ाकर उसे अंदर भेज दिया। आन्या ने अंदर जाकर किताब टेबल पर रखी और बेड पर गिर गई। वहीं अन्वय वापस अपने कमरे में जाने के लिए पलटा तो मोहिनी झट से छुप गई। अन्वय को कुछ शक हुआ, उसने अपनी तेज नजरें घुमाई, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मोहिनी ने उसके जाते ही आन्या के कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए, पर फिर कुछ सोचकर रुक गई और वहां से चली गई। आज आन्या का नाश्ता उसके कमरे में आ गया था। अनामिका जी अपने महल की व्यवस्था देखने में व्यस्त थीं और अन्वय अपने काम में लगा हुआ था। आन्या ने ब्रेकफास्ट किया, फिर जुली के साथ नीचे गार्डन में चली आई। वे अभी वहां आए ही थे कि मोहिनी वहां आ गई। आन्या आने के बाद दूसरी बार उससे मिल रही थी। अपने स्वभाव के हिसाब से वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी, पर मोहिनी तो उससे नफरत करती थी। वो गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली।